اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ ہم سورہ حج کی کچھ آیات سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس سورت میں حج کے کچھ ارکان کا ذکر ہے، لہذا معلوم ہوتا ہے کہ اسی وجہ سے اس کا عنوان یعنی ٹائٹل حج رکھا گیا ہے. اور جیسا ہم سب کو ہی علم ہے کہ یہ ذوالحج کے مہینے میں حج ہوتا ہے، عام طور پہ 5 دن کا. تو اس کے بارے میں کچھ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، کچھ آج تو نہیں ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آئیں گے. آیا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں اس کے معنی ہمیشہ سمجھاتا ہوں کہ ذہن میں رہنا کہ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پروٹیکشن میں آتے ہیں شیطان سے جو دھتکارا ہوا ہے. اس لیے کہ اب ہم جو پڑھنا چاہ رہے ہیں، سمجھنا چاہ رہے ہیں، اس میں شیطان ہم کو نہ بھٹکائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، فائدہ پہنچانے والا ہے، رحیم ہے، ترس کھانے والا ہے. تو ترس کھا کر ہم کو فائدہ پہنچا رہا ہے کہ اپنے گھر میں اپنی کتاب دے کے جو ہے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بٹھا دیا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یہ انسانوں کے لیے یہ 4-5 جگہ پہ جو ہے مخاطب کیا گیا ہے کہ اے انسانوں، اپنے پالنے والے مالک سے ڈرو. اب عام طور پہ ترجمہ یہی کیا جاتا ہے کہ ڈرو. اب اس کی تفسیر اگر قرآن میں پورا تقوی کا لفظ اگر آپ فالو کریں تو اب جیسا سورہ بقرہ میں آپ لے لیجئے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدى للمتقین. یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ مما رزقناهم ينفقون، یعنی یہ ایمان لاتے ہیں، عمل کرتے ہیں. اب ہمارے پاس ذہن تقوی کا صرف یہی ہو گیا کہ پرہیزگاری. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈر کے گناہوں کو چھوڑتے ہوئے نیک عمل کرنا، یعنی قرآن پہ ویسے ہی عمل کرنا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو ایک تو یہ امپریٹیو ٹینس ہے، حکم آ رہا ہے کہ یا ایھا الناس، مومنین کا، الذین آمنو کا ذکر نہیں آ رہا ہے، کہ اے انسانوں، اپنے پالنے والے مالک سے جو ہے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک یہ دنیا ختم ہونے کی جو آخری گھڑی ہے اس کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اب یہ ساتھ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، یہ ترجموں میں بھی بعض جگہ پہ جو ہے غلط اس کا ترجمہ ہو گیا. یہ سیکونس فالو کیجئے، یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہمیشہ چلنے والی نہیں ہے، قیامت آنے والی ہے. یعنی ہم جو، میں بھی اب روانی میں قیامت بول دیا، یعنی اینڈ ہونے والا ہے، یہ سب ختم ہونے والا ہے. تو پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو پورے لوگ مر جائیں گے. پہلے سور پہ پورے لوگ مر جائیں گے. اب وہ نہیں معلوم کتنا گیپ ہوگا اس میں. احادیث میں بھی 40 کا فگر آیا، مگر یہ کلیریفیکیشن نہیں ہے کہ 40 گھنٹے، 40 سال یا کچھ، کوئی کلیریفیکیشن نہیں ہے. تو اس کے بعد میں عالم برزخ ہے، خبروں میں رہیں گے جیسے بھی کنڈیشن میں رہے قیامت تک. اب وہ قیامت جس کو بولتے ہیں، قیامت قیام سے ہے. قیام کا مطلب کھڑے رہنا. تو اینڈ آف دی ورلڈ کو قیامت نہیں بولتے، اس کو ساتھ کا لفظ آیا ہے. تو ساتھ کس کو بولتے ہیں؟ ساتھ کا مطلب گھڑی، لمحہ، مومنٹ. اس کو اچھی طریقے سے سمجھے. اب یہ دنیا ختم ہونے کی گھڑی، قرآن نے اس کو کیسا سمجھایا کہ لمح البصر او اخرب. یہ جو دنیا ختم ہوگی وہ پلک جھپکنے کی دیر یا اس سے بھی قریب. لے مین کو، آرڈنری آدمی کو سمجھانے کے لیے یہ ضروری تھا. سائنٹسٹ اس پہ ریسرچ کرے. ہم پچھلی دفعہ پڑھے ہیں کولیپسنگ یونیورس، پوری یونیورس جو ایک جگہ کولیپس ہو جائے گی. ہم پچھلی دفعہ پڑھے تو یہ کولیپس کتنا فاسٹ ہوگا، یہ آخری گھڑی کتنی دیر میں آئے گی. تو یہ لوگ کیلکولیٹ کرے تو معلوم ہوا کہ 1 ÷ 1 ÷ 43 آف اے سیکنڈ، 1 ÷ 10 آف اے سیکنڈ، 1 ÷ 100 آف اے سیکنڈ، 1 ÷ 1000 آف اے تھاؤزینڈ آف اے سیکنڈ، 1 ÷ 1 ÷ 43 آف اے سیکنڈ میں قیامت آ جائے گی. تو پھر قرآن اور سائنس میں اتنا بڑا کوآرڈینیشن ہو گیا. اب یہاں پچھلی دفعہ بھی میں ایک بات بولنا بھول گیا کہ بھئی اب یہ हम सब मर गए, उसके पहला सूर हुआ पूरे मर गए, दफन हो गए, सब हो गया, खिस्सा खत्म। उसके बाद में दूसरा सूर जब हुआ तो पूरे उठे। सीक्वेंस ये है कि उठने के बाद हिसाब किताब यही होने वाला है, पूरा हिसाब किताब यही होने वाला है। तो सूरह इब्राहिम में एक आयत आई है जिसमें कहा गया है कि सूरह इब्राहिम ही की है, 14वीं सूरत है वो। तो वहां सवाल ये किया, ये बताया गया कि ये जमीन और ये आसमान बदल दिए जाएंगे, ये जमीन जमीन नहीं रहेगी, ये आसमान आसमान नहीं रहे, बदल दिए जाएंगे। अब आयशा रजीला ताला अन्हा का इंटेलिजेंस देखिए आप, आपने फौरन सवाल किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जब जमीन और आसमान नहीं रहेंगे तो हम कहां रहेंगे। अब ये कोलैप्स हो गया, पूरी पूरी कायनात एक जगह आ गई, तो उस वक्त हम कहां रहेंगे। तो जवाब भी मुलाहिजा फरमाइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम पुल सिरात पे होंगे, इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जो कोलैप्सिंग यूनिवर्स थी वो तो कोलैप्स हो जाएगी। अब ये नई जमीन और आसमान बनेंगे, फिर एक्सपैंड होगी। 30 बिलियन ईयर्स का जो है ये साइकिल है, पूरी यूनिवर्स एक्सपैंड होती है, फिर कोलैप्स होती है, फिर एक्सपैंड होती है। तो जब ये कोलैप्स होंगी तो हम पुल सिरात पे होंगे। अब ये पुल सिरात का जो हदीस में बात आई है कि भाई उस पे ये दोजख पे डाला जाएगा, तो ये जो कोलैप्स होगी तो ये प्लास्मिक मैटर होगा, यानी इतनी टाइट होंगी कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन सब एक ही जगह होंगे, और मिलियंस ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा इसका, इसके ऊपर पुल डाला जाएगा। अब साइंस और कुरान और अहादीस को मिला है तो मालूम होता कि इसके ऊपर पुल डाला जाएगा। तो कहा कि बाज इस पे इतनी तेजी से गुजरेंगे जैसे कि बिजली गुजरती है, 300,000 किलोमीटर सेकंड की रफ्तार से गुजर जाएंगे, बाज हवा की रफ्तार से गुजरेंगे, बाज घोड़े की रफ्तार से, बाज परिंदों की रफ्तार से, बाज भागते हुए, बाज चलते हुए, बाज रेंगते हुए, और बाज बदकिस्मत हमको हमारे मुतालिकीन को अल्लाह ताला बचाए, कट कट के दोजख में गिरेंगे। तब यह मालूम हुआ कि हम लोग कुरान के तर्जुमे और तफसीर में सात और खियामत को मिला देते हैं। सात का मतलब कायनात खत्म होना है, खियामत का मतलब उसके बाद में हमारा खियाम खड़े रहना है हिसाब किताब देने के लिए। तो अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इन्ना ज़लज़लत सात शयउन अज़ीम, बेशक एक दुनिया खत्म होने का जो लम्हा है, घड़ी है, जो मूवमेंट है 10^-43 सेकंड जो मूवमेंट है, वो एक बहुत बड़ी चीज है। कितनी बड़ी चीज है अब हमको ही समझाना पड़ेगा भाई, कोई एस्ट्रोनॉमर या कॉस्मोलॉजिस्ट को ये बात सिर्फ उनको समझाना रहता तो मुमकिन है अपने मैथमेटिकल टर्म्स में समझाते, लेमैन को समझाना है। इतनी जबरदस्त होगी कि यौमा तरोना तज़हुलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अरज़ात, यानी जिस दिन तुम देखोगे कि हर दूध पिलाने वाली जिसको दूध पिला रही है उसको छोड़ देगी। कोई माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है क्या? नहीं परेशानी होगी, यानी माएं अपने बच्चों को दूध पिलाते हुए दूध पिलाना छोड़ देंगी, इतनी परेशानी होगी। बताऊ कुल्लु ज़ातिन हमलिन हमलहा, और हर हामिला औरत अपना हमल गिरा देगी, यानी कैसा नहीं झटका होगा कि हमल गिर जाएगा उसे। अबे कोई औरत जो एक्सपेक्ट कर रही है, प्रेग्नेंट है, कोई सीढ़ों पे से फिसली तो आमतौर पर यह होता है कि भाई तो हमल गिर जाता है, तेज चले, कभी बाज वक्त ऐसा शुरू में बोलते बेड रेस्ट लेना, ऐसा करना, तो इतना बड़ा झटका होगा कि हामिला औरतों का हमल गिर जाएगा। और तीसरा कंडीशन बता रहे हैं कि वह तरन नासा सुकारा व मा हुम बिसुकारा वला किन्ना अज़ाबल्लाहि शदीद, और तुम लोगों को नशे की कैफियत में देखोगे, और ये नशे में नहीं होंगे बल्कि होगा ये कि अल्लाह ताला का अजाब बड़ा शदीद होगा, बड़ा सीवियर होगा। अब ये सकारा के लफ्ज को आप समझिए कि कई जगह पे कुरान को इसमें समझा दिया। एक लफ्ज सकारा शराब के नशे के लिए आया, शराब के नशे में दिमाग खत्म हो जाता, दिमाग क्या कर रहे हैं दिमाग पे मालूम ही नहीं होता। इसीलिए बात आई है कि तुम जब नशे की कैफियत में हो तो नमाज के करीब भी मर जाओ। क्यों? रीजन दिए कि तुम जो पढ़ते हो समझते नहीं हो। अल्लाह माफ करे, हमारी नमाजें शराबियों की नमाजें, समझिए, करेक्ट करना है अपने आप को। हमारी नमाजें शराबियों की नमाजें हैं। बोले तुम शराब नशे की कैफियत में नमाज के करीब भी मत जाओ, इसलिए कि तुम जो बोलते हो वो समझते नहीं। तो एक सुकारा को ये नशे की कैफियत बताया, एक सुकारा को जो है शहवत की कैफियत बताया, एक नौजवान आदमी है, शहवत का जोर है, उसको अकल काम ही नहीं कर रही, बस उन्हें बोल रहा बस मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाना कैसा है, अकल काम नहीं कर रही। तो मालूम हुआ कि ये जो दुनिया खत्म होगी तो उस वक्त ऐसा कंडीशन होगा कि अकल माउफ जिसको बोलते हैं, अकल पैरलाइज हो जाएगी, अकल काम नहीं करेगी। लेकिन ये किस वजह से होगा? शराब के नशे या शहवत की वजह से नहीं होगा, बल्कि ये होगा इसलिए कि अल्लाह ताला का अजाब इतना शदीद होगा कि दिमाग काम नहीं कर रहा। और इंसानों में कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह ताला के बारे में बगैर इल्म के जो है बहस करते हैं, झगड़ा करते हैं, और ये जो शैतान जो सरकश है, रिबेल है, जो अल्लाह ताला के खिलाफ काम कर रहा है अहकामात के, हर शैतान की पैरवी करते हैं, इत्तेबा करना, पैरवी करना। देखिए इत्तेबा और इताअत में परसों किसी इज्तिमा में बड़ी बात मुझे खुद समझ में आई। सुलह हुदैबिया के लिए जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और वो उमरा करने नहीं दिए वो लोग, तो आप आए और फिर आपने सहाबा से कहा कि अहराम खोल दो, अहराम बांधे हुए थे, अहराम खोल दो। किसी ने नहीं सुना, इताअत नहीं की। तो आप अंदर तशरीफ ले गए, अजवाजे मुतहरात में से जो भी आपके साथ थी, तो उन्होंने राय दिया कि आप ऐसा कीजिए, आप खुद अहराम बदल दीजिए, कपड़े पहन लीजिए ऑर्डिनरी, वो लोग खुद कर लेंगे। तो आप अहराम बदल के बाहर जब आए तो लोग भी अहराम खोल के कपड़े पहन लिए। ये इत्तेबा है, ये इताअत सुनना, लिसन टू समवन, इत्तेबा टू प्रैक्टिकली फॉलो समवन। तो यहां जो बात आ रही है वो यत्तबियू कुल्ला शैतानी मरी, ये जो शैतान जो सरकश है अल्लाह ताला के अहकामात के खिलाफ, हर शैतान की पैरवी करते हैं ये लोग। ये कौन लोग हैं जो इंसानों में से जो अल्लाह ताला के बारे में बगैर इनके झगड़ा करते हैं? ये क्या झगड़ा करते हैं? नाऊज़ु बिल्लाह, कोई बोले फरिश्ते बेटियां हैं, कोई बोले ईसा अलैहि सलाम बेटे हैं, कोई बोले कि भाई वो फलाने साहब की सुनते उन्हों, और मिनिस्टर और पीए की मिसाल दे दी, आप मिनिस्टर के पास जा सकते क्या, पहले पीए को अप्रोच करना पड़ता। इस तरीके से अल्लाह ताला के बारे में अल्लाह ताला बोल रहे हैं, मैं तुम्हारी रगे जहां से करीब हूं, ये बंदे मेरे से मेरे बारे में पूछते हैं, कहो कि इन्नी करीब, मैं करीब हूं। और अल्लाह ताला जब करीब है तो उनसे ज्यादा करीब कोई हो ही नहीं सकता, तो मुझे पुकारो मैं जवाब देता हूं। ये तमाम बातें आई है तो बगैर इल्म के। अब हमको अल्लाह ताला का इल्म कैसे मालूम होना? कुरान और हदीस से मालूम होना। ना कुरान समझे ना हदीस समझे, कुछ भी नहीं समझे। देखिए बाज़ वक़्त हो रहा है कि कोई साहब कहीं नमाज पढ़ा रहे थे, उस महा से शुरू किए वो, अल्हमा फुजूरहा व तख्वाहा, तो ऐसी बातों में जिक्र आया कि साहब जुमला ही नहीं बनता। वो नफसिम व मा सवाहा फ अलहमा फजूराहा व तखवा, जुमला जो है इस तरीके से बनता, जुमला ही नहीं बनता अरबी का। तो बोले नहीं मेरे को वो याद है, बस वहां से याद है, मैं पढ़ दिया। बोले तीन आयतें पढ़ना था, पढ़ दिया। अब आप सोच के देखिए कि ये हमारा कुरान का जौक है। तो यहां ये बात समझना है कि अल्लाह ताला के बारे में जो बातें आई वो सिर्फ कुरान और हदीस में आई है। तो बगैर इल्म के अल्लाह ताला के बारे में बहस करने का मतलब यह है कि ना कुरान से वाकिफ है ना हदीस से वाकिफ है। अल्लाह ताला के बारे में आप बहस करके चले जा रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं? कि हर शैतान को जो है आप फॉलो कर रहे हैं, तो शैतान अल्लाह ताला के मुखालिफ जाता है। कुतिबा अलैहि अन्नहु मन तवल्लाहु अन्नहु युज़िल्लुहु व यहदीहि इला अज़ाबिन सईर, अज़ाबिस सईर। यानी इसके बारे में, शैतान के बारे में लिख दिया गया कि जो कोई इसकी तरफ पलटेगा। देखिए वाव लाम ये का जो मादा है, पलटने के, तवल्ला पलटने के भी माने आते, वली गार्डियन के भी माने आते, वली दोस्त के भी माने आते। तो जो कोई शैतान के तरफ पलटेगा, जो कोई शैतान को अपना गार्डियन मानेगा, जो कोई शैतान को अपना दोस्त मानेगा, तो बेशक ये उसको गुमराह करेगा, जन्नत के रास्ते से हटा देगा। शैतान की क्वालिटी लिख दिया गया है, कुतिबा अलैहि, इसके बारे में लिख दिया गया है कि जो कोई इसकी तरफ पलटेगा, इससे दोस्ती करेगा, इसको अपना गार्डियन मानेगा, तो अन्नहु युज़िल्लु, तो वो उसको गुमराह करेगा, वो यहदी इला अज़ाबिस सईर, और उनको रास्ता दिखाएगा, हिदायत देगा, काहे की यानी दहकती आग के अजाब की तरफ का रास्ता बताएगा। अब देखिए यहाँ शैतान के लिए यहदी ही आया है। हम समझते कि हिदायत से सही रास्ते की है, हिदायत गलत रास्ते की भी है। इस वास्ते हिदायत के माने समझिए, हिदायत का मतलब रास्ता दिखाना। अब अल्लाह ताला जब रास्ता दिखाएंगे तो सही रास्ता दिखाएंगे। यहां जब आ रहा है वह यहदी ही, और उसको रास्ता दिखाएगा यानी दहकती हुई आग के अजाब का रास्ता दिखाएगा। वहां भी हाथ पकड़ के नहीं ले जाएगा, वसवसों से जो है रास्ता दिखाएगा कि देखो ये रास्ता है। तो हिदायत के माने समझना है। अब हम जो दुआ करते अभी नमाजों में चार वक्त हम पढ़ चुके हैं, बल्कि 8-10 वक्त पढ़ चुके हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको रास्ता दिखाइए सीधा जन्नत को जाने वाला रास्ता, जो शॉर्टकट है जन्नत को। तो हिदायत के मतलब रास्ता दिखाने का है, हाथ पकड़ के रास्ते पे ले जाने का नहीं है। या अय्युन नासु इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बासी, ऐ इंसानों अगर तुम मरने के बाद फिर जी उठने के बारे में कुछ शक में हो, तो अब ये पूरा डिस्क्रिप्शन आ रहा पैदाइश का, ये पूरा पैदाइश का डिस्क्रिप्शन आ रहा। अब इस पे काम कौन करे? प्रोफेसर स्मिथ करे, मॉरिस बोके करे, हमारे में से कोई भी नहीं करे। हम तो उसका गलत तर्जुमा कर दिए इस आयत का। हम आप एक एक लफ्ज को जब समझने की कोशिश करेंगे, इसको समझाए कौन है? जो नॉन मुस्लिम्स थे ये पढ़ के जो इस्लाम कबूल करे वो लोग समझाए इसको, हमारे लोग नहीं बोले। हमारे लोग अगर बोले तो फलाने साहब का ऐसा तर्जुमा, आप कैसा बोलते, अब अल्फाज आ जाएंगे। तो यहाँ बात ये आ रही क्या है, इंसानों अगर तुमको शक है मरने के बाद हम तुमको फिर उठाने का, फइन्नहु खलकनाकुम मिन तुराब, तो हमने तुमको तुराब से पैदा किया। तुराब को कुरान में कैसा डिस्क्राइब करे? बोले किसी को जब बेटी होती है तो उसका मुंह लटक जाता है, तो सोचता है कि शर्मिंदगी में इसको जिंदा रखूं या तुराब में दफन कर दूं। कुरान के समझाने का तरीका समझे। अब खबर की जो डेप्थ होती 2 फीट 3 फीट की डेप्थ होती, तो जो टॉप सॉइल है उसको तुराब बोलते, टॉप सॉइल को तुराब बोलते। इसी में वेजिटेशन होता, तो हम कैसा, हमारे माँ बाप का नुतफा एग जर्म स्पर्म और एग कैसा बने, वो जो जमीन जमीन से न्यूट्रिएंट्स लिए, झाड़ जमीन से पूरे जो है न्यूट्रिएंट्स लिए, अपनी गिजा लिए, खींचे, माँ बाप उसको खाए, वो खाने से उनका नुतफा बना और फिर अम्मा का जो है एग बना, वो दोनों जब मिले तो जो है, तो इसी तुराब में वापस जाएंगे दफन होके। लफ्ज का अल्फाज का सिलेक्शन देखिए, तुम समझ रहे हैं कि ये तुराब में जो तुम्हारी खबर है उसे हम नहीं उठाएंगे, तुम्हारी पैदाइश की इब्तिदा ही उस तुराब से हुई है। जो एक वक्त निकाल सकता मिट्टी से, दूसरे वक्त नहीं निकाल सकता। अच्छा, फिर उसके बाद में सुम्मा में नुत्फतिन, उसके बाद में नुत्फे से बना है, इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में जाइगोट बोले, यानी मर्द और औरत का जब नुत्फा मिल जाता है, मर्द का स्पर्म और औरत का एग जब मिल जाता है तो उसको जाइगोट बोलते हैं। तो नुत्फे से पैदा किए, फिर उसके बाद में बोले सुम्मा मिन अलखत, उसके बाद में अलखा से पैदा किए तुम। अब ये अलखा को हम क्या तर्जुमा कर दिया, खून का लोथड़ा। बखौल डॉक्टर इसरार अहमद के, माशाल्लाह बड़ी अच्छी तरीके से इस लफ्ज को वो भी समझाए कि क्यों गलत फहमी हुई होगी। बोले भाई किसी औरत का हमल गिरा होगा, देखे होंगे कि खून है, तो खून का लोथड़ा बोलकर ट्रांसलेशन कर दिया। अब मॉरिस बोके इस वर्ड पे रिसर्च किया, अलखा का मतलब होता जोंक, लीच, हम्माम में अक्सर निकलती, और अगर वो स्किन को पकड़ ले तो पकड़ के अपनी गिजा चूसती, खून चूसती। तो ये स्पर्म और एग जो मिल जाते हैं माँ और बाप के, वो यूटरस से लटक के जैसा लीच अपनी गिजा चूसती है, इस तरीके से वो जाइगोट अपनी, उसको जो है ये स्टेज में जो है बोलेंगे आप ब्लास्टुला, ब्लास्टुला जो है अपनी गिजा चूसता है माँ के रहम से, जैसा लीच चीज चूकती है। फिर उसके बाद में एन लाम खास के मादे में ताल्लुक कायम करना और मोहल्ला खो जाना। तो गालिबन प्रोफेसर स्मिथ का कुवैत में स्टेटमेंट है, मेरे पास कटिंग भी है कहीं, तो उन्होंने कहा कि किसी लफ्ज में ये एम्ब्रियोलॉजी का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा एक लफ्ज में नहीं समझाया गया किसी लैंग्वेज में सिवाय अरबी के।
One word alakha explains the whole process of embryology.
लेके बैठे रहे हैं ना, साइंस पढ़े ना इकोनॉमिक्स पढ़े ना कॉमर्स पढ़े, कुछ नहीं पढ़े, बस रूल्स 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 बना दे के पूरी कौम का जो है तमाशा बना के रहती। तो मैंने ये आपके जाकिर नायक साहब के वालिद बहुत आया करते थे, तमीम साहब को कैसेट भी दिए थे, वो बड़ा अच्छा कैसेट था, तमाम साइंटिफिक स्टेटमेंट थे उसमें अब्दुल करीम नायक साहब। तो उनको हम लोग एक वक्त लेटर लिखे के साहब मुस्लिम साइंटिस्ट की लिस्ट भिजाइए आप जो कुरान पे काम कर रहे हैं। तो लिस्ट भिजाए तो एक मुसलमान का नाम नहीं है उसमें, पूरे गैर मुस्लिमों का एक मुसलमान का काम नहीं किया, बल्कि उल्टा मैं इससे पहले बोल चुका हूं, मैं जब फर्स्ट टाइम यहां 1971 में जब रेडियंस में मेरे आर्टिकल्स आते थे कुरान और साइंस के, तो लोग जो है एतराज करना शुरू कर दिए थे, ये क्या कुरान को साइंस से मिला रहे। आज कोई नेशन ऐसा नहीं है जिससे कुरान और साइंस पे कोई किताब ना निकली हो, कोई नेशन ऐसा नहीं है, हर नेशन से जो है निकली है। तो एक एक स्टेज को कुरान ने 1450 बरस पहले समझाया। तो अब यहां ये फिर कहा कि सुम्मा मिन मुजगतिन, उसके बाद में मुजगा, मुजगा क्या होता है, चाबी हुई बोटी को मुजगा बोलते। तो ये जो हमल गिरते हैं वो लोग फोटो लेके बताए हैं, मेरे पास भी फोटोज हैं इसके, बताए हैं कि वो ये स्टेज में चाबी हुई बोटी के वैसा हो जाता है, ये ब्लास्टुला जो है ये उस वहां उसको आके एम्ब्रियो बोलते, यानी एम्ब्रियो चाबी हुई बोटी की तरह मुखल्लिकतिन व गैर मुखल्लिकतिन, यानी प्रोपोर्शनेट भी रहता और डिसप्रोपोर्शनेट भी रहता। बास का जो है भाई हाथ लांबे हो गए जरा ज्यादा, मगर यह है कि हाथ की जगह कभी पांव नहीं लगे, पांव की जगह कभी आंखें नहीं आई। फिर जितने पैदा होते हैं पूरा एक सी अजीब सी पैक फैक्ट्री है। अब आप स्कूटर्स बनाते तो पूरे स्कूटर्स हूबहू एक जैसे होते, सब इंसान है, बनते चले जा रहे हैं अम्माओं के पेटों में, वही माँ और वही बाप की औलाद है, लेकिन दो लोग जो है मिल ही नहीं रहे। हर प्रोडक्ट नया आ रहा, उसकी फितरत अलग है, उसकी सूरत शक्ल अलग है। तो प्रोपोर्शनेट और डिस्प्रोपोर्शनेट लकुम, ताकि तुमको हर चीज खोल खोल के समझा दे। तो प्रोफेसर स्मिथ जब को गालिबन मुझे नाम जहां तक याद है ये दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस कर रहे थे, तो कोई प्रेस रिपोर्टर उठ के बोला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुड हैव डिसेक्टेड और सीन द एम्ब्रियो अंडर द माइक्रोस्कोप। तो ये बोला कि भाई 1400 साल पहले ना डिसेक्शन की टेक्निक थी ना माइक्रोस्कोप था, तो ये किताब उसी की हो सकती है जिसने तुमको पैदा किया है। तब आप ये सोचिए कि दूसरी कौम वाले हमारे कुरान की सच्चाई का सबूत पेश कर रहे हैं, और हमारी बदकिस्मती है कि हम ऐसी किताब को हाथ भी नहीं लगा। तो बात कहां से शुरू हुई कि अगर इनको शक है कि हम फिर नहीं उठा सकेंगे, तो इनसे कहो कि हमने पहले तुमको मिट्टी से बनाया, फिर नुत्फे से बनाया, फिर उसके बाद में उसको अलखा बनाया, उसके बाद में मुजगा बनाया, फिर उसके बाद में क्या किया, सुम्मा नुखिरु फिल अरहाम, अब ये फीटस हो गया, अब ये फीटस जो है फिर रहमों में माँ वो नुखिरु फिल अरहामी माँ नशाओ इला अजल मुसम्मा, और हमने जो चाहा रहमों में एक मुकर्रर वक्त तक उनको ठहराया। आमतौर पे 9 महीने का पीरियड रहता है, वो बच्चा उसमें ठहरा, हमने ठहराया। हम इंसान की तो वही नहीं है। अब यहां अरहाम को समझाया क्या, देखिए समझिए, ये अरहाम का लफ्ज भी रे है, मीम का मादा है, अरहाम रहम का प्लूरल है, माँ का जो वूम होता है बच्चेदानी जिसको बोलते आप, वो रे है मीम उसी से मादा है। वहां बच्चे को बगैर मांगे के गिजा मिलती है, माँ को तबियत चाहिए खट्टा खाने की, माँ को नहीं चाहिए, बच्चे को चाहिए, एसिडिटी की कुछ कमी हो गई है और फिर कुछ टॉक्सिक कंपाउंड शुरू हो गए, माँ खया करना शुरू करी, हम लोग परेशान हैं, अरे वो कुछ भी नहीं, वो टॉक्सिक कंपाउंड निकलवा दे रहे हैं अल्लाह ताला पेट से, बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए रऊफ हैं अल्लाह ताला, नुकसानदेह चीजों को निकाल देते हैं। और इसे रहम और रहमान रहीम समझाया जा रहा अरहाम से, जैसा बच्चे के पेट में माँ
بغیر اس کے مانگے کے غذا دیتی ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم کو بغیر مانگے کے تمام سہولتیں دیتے ہیں, تمام فائدے پہنچاتے ہیں, جیسا ماں رحم میں اپنے بچے کے ساتھ کرتی ہے. اس کو تو ہوش بھی نہیں ہے, ہم کو بھی ہوش نہیں ہے, سانس چل رہی ہے, دل چل رہا ہے, دماغ چل رہا ہے, بس چل رہا ہے, کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. تو بولے اس کو ٹھہراتے ہیں, ثم نخرجکم طفلا, پھر ہم تم کو بچے کی شکل میں نکالتے ہیں. تو یہ بھی بات ڈاکٹر اسرار احمد میڈیکل آدمی ہے, بڑے اچھی طریقے سے سمجھائے کہ جانور کا جو بچہ کھڑا پیدا ہوتا وہ تھوڑی دیر لڑکھا رہا تھا, اس کے بعد میں چلنا شروع کرتا. اور ڈسکوری چینل پہ یا اینیمل پلانٹ پہ کہیں بتائے تھے کہ وہ تانبے جو ٹارٹائز ہوتا اس کے جو انڈے ہیں, وہ انڈے پھوٹتے وہ تانبے لوگ سیدھا پانی کی طرف چلے جا رہے ہیں. کون سکھایا ان کو کہ پانی ادھر ہے, پانی وہاں جانا ہے, کون سکھایا اس کو؟ مگر پیدا ہوتے چل رہے ہیں. انسان کا بچہ معذور رہتا ایک سال بھر تک, چھ مہینے سال بھر تک نہ چلتا نہ رینگتا, کچھ بھی نہیں, اماں کے گود میں رہتا, انہیں سنبھالتا. حالانکہ اشرف المخلوقات ہے. تو اس لیے کہ تمہاری پیدائش یاد کرو, جانور کا بچہ تم سے اچھا ہے, پیدا ہوتے چلتا ہوں. تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ پھر تم کو بچے کی حیثیت سے نکالتا ہے, ثم تبلغوا اشدکم, پھر تم اپنی شدید عمر کو پہنچ جاتے ہو, جوانی کو پہنچ جاتے ہو. علم دیتا ہے, حکمت دیتا ہے, طاقت دیتا ہے. کس نے دیا ہے؟ کبھی غور کر کے دیکھے آپ, یہ جو انٹیلیجنس ہے, جو وزڈم ہے, سمجھنے کی جو صلاحیت ہے, دیکھتے ریسیو کرتے, کان سے سنتے, پورا جمع ہوتا, میموری ریاکٹ کرتی پورا. میں اس سے پہلے کئی مثالیں دے چکا ہوں کہ بھائی کوئی صاحب وہاں سے لڈو پھینکتے, آنکھ دیکھتی فوراً دماغ کو بولتی کہ بھائی لڈو آ رہا, دماغ اینالائز کرتا, بولتا ہاتھ آگے کر, ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. کوئی ایک صاحب بنڈا پھینکتے, دماغ کو جاتا, وہاں اینالائز ہوتا, بولتا ارے مار لگیں گا, بچ اس سے, دبک دبک جا. یہ پورا دماغ میں چل رہا ہے. بات کر رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں میں, مچھر کاٹا, مچھر کو دیکھا بھی نہیں میں, خالی دماغ میں سگنل گیا, بولا وہاں مچھر کاٹا, سیدھے ہاتھ کو لے کے جا کے وہاں اس کو مسل دے. تو یہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی. جوان جب ہوا آدمی صلاحیتیں نہیں, وہ من کو میں یوتوفا, وہ من کو من, تو تم میں سے ایسا ہوتا ہے جو کم عمری میں ختم ہو جاتا ہے, جوانی میں ختم ہو گئے, ایسا ہوتا ہے. وہ من کو میں یوردو الا ارزل العمر, اور تم میں سے ایک ایسا ہوتا ہے جو پلٹایا جاتا ہے بیکار زندگی کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ یہ ارزل العمر سے مجھے بچا لیجیے. جب آدمی کیسا بیکار ہو جاتا ہے, لکیلا یعلم من بعد علم شیئا, کہ تمام علم حاصل کرنے کے بعد اس کو کوئی چیز کا علم نہیں رہتا. میں ایک بینگلور کے ہارٹ اسپیشلسٹ کو دیکھا تھا, 80-90 برس کی عمر ہوگی ان کی, بیٹھے رہتے لنڈے بن کے. تو ان کے بارے میں لوگ بولتے کہ صاحب یہ پورے بینگلور میں یہ ایک ہی آدمی تھا جس پہ لوگ تڑپتے تھے آ کے اپنے آپ کو بتانے کا. اب اس کو میڈیسن چھوڑو, ان کو یہ تو خوش نہیں ہے کہ بیٹا ہے. ہماری خود پہچانت میں کوئی محترمہ تھی, 90 برس کی عمر ہو گئی تھی, ان کے بڑے بیٹے کا انتقال ہوا, تو لوگ ان سے ایک سال چھپائے, بولے یہ عمر میں اتنا بڑا صدمہ ہو جائے گا ان کو. ایک سال کے بعد بیٹے کا نام بول کے بولے کہ ایسا ہوا, بولے تو کون ہے وہ پوچھ رہے ہیں, اپنے بڑے بیٹے کو نہیں پہچان رہے, اپنے چہیتے بیٹے کو نہیں پہچان رہے. میموری چلے گئی ہے, علم چلے گیا ہے, کچھ ہوش ہی نہیں ہے, کون کدھر ہے, یہ کون کرتا ہے یہ؟ اب ہماری تو عمر اسی قریب آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے یا اللہ ارزل العمر, مسنون دعا ہے کہ بیکار عمر سے ہم کو بچائیے. کہ سب جانتے ہوئے بھی جو ہے کوئی چیز کا ذہن نہیں, ابھی بھلکڑ پن بہت ہو گیا ہے, بھول جاتے ایک چیز, سوچتے بھول جاتے, پھر ایک دم یاد آتا ہے, ایسا ہے. تو سب جانتے ہوئے بھی نہیں جانتا. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ دیکھو تم اگر اس مثال سے بھی نہیں سمجھتے تو اور ایک مثال سے سمجھو. وہ ترل ارضا حامدا, اور تم دیکھتے ہو کہ زمین جو ہے بنجر ہے بالکل. اب جیسا بارش ہونے سے پہلے گرما کے موسم میں جو ہے پوری بنجر ہے زمین, کوئی جھاڑ نہیں دکھ رہا ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ, اور جیسے ہی ہم اس پہ پانی بارش برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے, پھولنے لگتی ہے, اور پھر ہر قسم کی خوبصورت چیز اس میں اگاتی ہے. अब एक जगह आया सूरह फुरकान की 9th आयत में आया कजालिकल नुशूर, हम इस तरीके से तुमको उगाएंगे। अब हदीस का एक्सप्लेनेशन इसमें आया कि भाई खबर में हो या जलाने में हो, हर चीज जल जाती है सिवाय रेड़ की हड्डी का एक पीस बच जाता है। तो कियामत में उसी से पूरा इंसान बनाया जाएगा। मैं आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर यूसुफ हुसैन का रेफरेंस दे सकता हूं। हमारे मीटिंग्स होते थे इस्लामिक एकेडमी ऑफ साइंसेस के, तो कई एक्सपर्ट्स माशाल्लाह दीन के भी दुनिया के भी सब आ जाते थे। तो वो एक मिसाल अमेरिका जाके आए थे तो बता रहे थे कि भाई यानी कुछ रिसर्च ऐसे हो रहे हैं कि फ्रॉग के टिश्यू से पूरा फ्रॉग बनाया गया। तो इंसान ये सब कर सकता है, क्लोनिंग कर सकता, टेस्ट ट्यूब बेबी बेबी बना सकता, अल्लाह ताला नहीं कर सकते। तो जैसा मुर्दा बीज को बारिश होने के बाद जो है पूरा झाड़ता झाड़, बीज में पूरा जो है उसका जेनेटिक प्रोग्राम है क्या बनना है। एक आम का झाड़ है वो गुठली में पूरा लिखा हुआ है, ये आम का झाड़ कितना होगा, उसके पत्ते कितने होंगे, वो कितने आम लगेंगे, और जो है फिर उसके बाद में झड़ने के बाद कितने बरस तक ये जिंदा रहेगा, पूरी लाइफ का प्रोग्राम है। जैसा आपके मेरे पूरी लाइफ का प्रोग्राम है, अंदर पूरा जेनेटिक प्रोग्राम तकदीर लिख दी गई है, पूरा प्रोग्राम है क्या क्या करेंगे, मरने का वक्त भी लिखा हुआ है, कहाँ मरेंगे, कैसा मरेंगे, कब मरेंगे, सब लिखा हुआ है। तो यहाँ ये है, ये मिसाल दे रहे हैं कि जैसा बीज उगता है इस तरीके से जालिका इस तरह होगा। भी अन अल्लाह, ये इसलिए है कि भी अन अल्लाह हुवल हक, ये इसलिए है कि अल्लाह ताला हक है, ट्रुथ है। वो अन्नहु यूही अल मौता, और वो ही मुर्दों को जिंदा करते हैं, जिंदों को मौत देते हैं, मुर्दों को जिंदा करते हैं, वही मुर्दों को जिंदा करते हैं। वो अन्नहु अला कुल्ली शयइन कदीर, और बेशक वो हर चीज पे कुदरत रखते हैं। देखिए बाज़ वक़्त दुआओं में इंसान की कमजोरी है, क्या है कि अल्लाह मियां कबूल करते जी नहीं, कि कैसा होएगा, तो उस वक्त ये याद कर लेना कि इन्ना अल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर, कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज पे कादिर है। हम उनको उनकी ताकत को समझ ही नहीं सक रहे हैं, हम अपनी ताकत से उनकी ताकत का अंदाजा लगा रहे हैं, इतने बेवकूफ हैं हम। वो हर चीज पे जो है कादिर है। वो इन्ना सात, यानी ये दुनिया के खत्म होने का लम्हा घड़ी, आते ही तुम ला रहे बफी है, वो आके रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं। ये तो कुरान है, इट्स अ फैक्ट। अब फैक्ट फाइंडिंग जो साइंस है वो भी बोल रही कि द वर्ल्ड हैज टू एंड। सूरह अंबिया की 104th आयत में आप देख चुके हैं कि कोलैप्स होगी यूनिवर्स, हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स, एंट्रोपी बढ़ जाएगी, डिसऑर्डर बढ़ जाएगी, दुनिया खत्म होने वाली है। साइंस भी बोल रही दुनिया खत्म होगी, उसके साइंस बताए निशानियां क्या होंगी, अर्थक्वेक्स बढ़ जाएंगे, वॉल्केनिक इरप्शंस बढ़ जाएंगे, समंदरों के लेवल ऊंचे हो जाएंगे। अब क्या हो रहा है, तो इंडोनेशिया तो हेडक्वार्टर्स ऑफ अर्थक्वेक्स हो गया है, बात करें कि 8-10 दिन नहीं गुजरते एक अर्थक्वेक सुनते आप, तो अर्थक्वेक्स बढ़ जाएंगे कियामत से पहले, वॉल्केनिक इरप्शंस बढ़ जाएंगे। तो यह अब मालूम हो रहा है कि ये एंड जो है खरीब, भाई आप अल्लाह ताला के पास खरीब तो मिलियंस ऑफ ईयर्स, बिलियंस ऑफ ईयर्स, वहां का टाइम का कॉन्सेप्ट अलग है। वन अल्लाह जब रसू मन फिर खबूर, और बेशक अल्लाह ताला उन लोगों को जो खबरों में है उनको उठाएगा, यानी जो भी मर गए हैं उनको उठाएगा। वो मिनन ना सी मई उजा दिलो फिल्लाही बगैर इल्मी वला हुदन वला किताब मुनीर, और फिर इंसानों में ऐसा है जो अल्लाह ताला के बारे में बगैर इल्म के और बगैर हिदायत के, बगैर रास्ता जाने के और बगैर रोशन किताब के अल्लाह ताला के बारे में जो है क्या करता है, बहस करता है, कुछ भी नहीं। एक साहब मुझसे मिले थे बहुत 30-40 साल पहले, तो बड़े सूफियाना किस्म की बातें कर रहे थे वो, तो मैं ऐसी बातों में काफी देर, घंटा दो घंटे उनके साथ गुजारा, मैं कोई दावत में सब छोड़ दे के उनके साथ ही गुजारा, बड़े अच्छी बातें कर रहे थे। तो मैं उनसे कैजुअली ऐसे पूछा कि साहब आप किसका तर्जुमा फॉलो करते हो कुरान में, तो बोले मियां हम कुरान पे आए कहां से, अभी हम तो मारिफत इलाही में फंसे हुए हैं। बोले मैं बोला इसके बाद एक बात भी नहीं करूंगा मैं इनसे, जो अल्लाह को कुरान से नहीं पहचानता वो अल्लाह को कैसा पहचानेगा। तो अब ये एक एक किस्म के बगैर इल्म के जो बोलते चले जा रहे हैं, अब 30-40 बरस पहले जाहिर है तजुर्बा कम था, उनकी बातें बड़ी जबरदस्त मालूम हो रही थी। तो बात यह समझना है कि बगैर इल्म के कोई बात नहीं होना। कुरान और हदीस का, कुरान से अल्लाह ताला को समझने की कोशिश कीजिए, हदीस से समझने की कोशिश कीजिए, इसी में हिदायत है, रास्ता दिखाया गया है। और ये किताब में मुनीर है, रोशन किताब है, उसमें रोशनी में रास्ता दिखाती है। ये जो आदमी है सानिया इतनी, यानी पलटते हुए अपने अकल में या अल्लाह ताला के बारे में जो बहस करता है गलत, ली युजिल्ला अन सबीलिल्लाह, उनका मतलब क्या रहता है कि अल्लाह के रास्ते से उनको गुमराह करे लोगों को। तो देखिए, अब जैसा एक बात है कि बाज लोगों का ऐसा है गुनाह की जिंदगी गुजरती है उनकी, अब उनके दोस्तों में कुछ नमाजी परहेजगार भी लोग आ जाते हैं तो उनको समझाते हैं, अरे मियां पढ़े नहीं कुरान में गफूर रहीम, अल्लाह ताला गफूर है रहीम है, चलो चलो क्या होता, कुछ नहीं, तो फलानी जगह जाएंगे, फलाना पिक्चर देखेंगे, वो करेंगे। तब ये भटकाना है, क्योंकि अल्लाह ताला बोल रहे हैं मैं गफूर और रहीम उन लोगों के लिए हूँ जो ईमान ला के अमल करे, उसमें कुछ गलती हो गई तो उनके लिए गफूर और रहीम। जैसा पिछली दफा कोई साहब पूछ रहे थे, वो रशलिया में, वाद अल्लाहु लजीना आमिनु आमिलु सालिहाती लहू मग़फिरतुन व अजरुन अज़ीम, यानी अल्लाह ताला का वायदा है उन लोगों से जो ईमान लाए और अमल साले करे, यानी कुरान पे वैसी अमल करे जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, उनकी मग़फिरत है और अजर है। वल्लज़ीना कफरू व कज़्ज़बू भी आयातिना उलाइका असहाबुल जन्ना, और वो लोग जो कुफ्र करे और कज़्ब करे अमल नहीं करे तो उनके लिए तो जहीम का दोज़ख का अज़ाब है उनका। तो ये अल्लाह ताला के बारे में अस्माउल हुस्ना से खेलना, किसी एक इस्म को लेके बैठ जाना, भाई जहां अल्लाह ताला गफूर और रहीम है वहां शदीदुल इक़ाब भी है, आदिल भी है, अदल करने वाले हैं, भाई काफिर को भी मग़फ़िरत कर दी, मोमिन को भी मग़फ़िरत कर दी, तो फिर ये इम्तिहान बोल रहे हैं, फिर काय का इम्तिहान है, ये बात समझने की है। जैसा मैं आपको और एक हदीस सुना देता हूँ कि एक हदीस में बात आई है कि जन्नत में कोई नहीं दाखिल होगा सिवाय अल्लाह ताला की रहमत के। तो सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी? तो कहा कि हाँ मैं भी। तो इसका मतलब जो निकलता वो ये है कि देखो तुम अपने अमल को बुत मत बना लो कि मैं ऐसी नमाजें पढ़ रहा हूँ, ऐसे रोजे रख रहा हूँ, इतनी खैरात कर रहा हूँ, मेरा जन्नत में जाना जरूरी है। अमल से नहीं, अल्लाह ताला की रहमत से लोग जन्नत में जाएंगे। अच्छा, आप खाली उस हदीस को ले लिए तो फिर कुरान का नाजिल होना बेमानी हो जाता है। तो जब अमल है ही नहीं तो फिर कुरान की जरूरत क्या है, हदीस की जरूरत क्या है, तौरात की जरूरत क्या है, इंजील की जरूरत क्या है, ज़बूर की जरूरत क्या है, अमल करना है बोल के। तो वहां ये बात समझाई जा रही है, कहीं तुम ये समझोगे कि मैं भाई इतना अमल है मेरा, इतनी नमाजें तहज्जुद गुजार हूं, मैं ऐसा करता हूं वैसा करता हूं, मेरा तो जन्नत में जाना जरूरी है। जरा बात तवील होती, मैं कोट नहीं कर सकता, किसी को जबानी सुना था मैं कि भाई मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पे जा रहे थे तो कोई शराबी पूछा बोलते कि मैं मूसा जरा हमारा मुकाम पूछ लेना क्या है मरने के बाद, उतने में कोई इबादत गुजार भी था, बात समझाने बोल रहा हूं मैं, ऑथेंटिसिटी मुझे नहीं मालूम, कोई इबादत गुजार भी था बोले मूसा जरा हमारे बारे में पूछना क्या मुकाम है जन्नत में। तो खैर मूसा अलैहि सलाम जब आए तो पहले शराबी मिला तो उससे बोले कि भाई तेरा तो दोजख है, तो मचल गया, बोला इंसाफ, मुझे दोजख के अलावा मिलेगा क्या। अब ये जो इबादत गुजार थे वो पूछे मूसा क्या हुआ मेरा, तो बोले जन्नत में एक छोटा सा कमरा, छोटा सा कमरा, इतनी इबादत के लिए छोटा सा कमरा। तो बोलते वही आई कि फैसले बदल के सुना दो, उसको जन्नत में डालो और इसको दोजख में डालो, कि इबादत पे भरोसा कर रहा है, वो इबादत को बुत बनाया हुआ है। इबादत क्यों कर रहे हैं हम, इबादत इसलिए कर रहे हैं, देखिए एक पैसिव वॉइस आ रही है इंशाल्लाह, वो बात वहां बात आ रही है कि हिदायत अल्लाह ताला की दी हुई हिदायत है, मेरा क्या क्रेडिट है, ना मेरा इल्म है, ना मेरी हिकमत है, ना मेरी हिदायत है, ना मेरी उम्र है, ना जिंदगी, ना रिस्क, कोई चीज पर मेरा बस नहीं है। तो बात यह समझना है कि ये अपने फखर पलटता हुआ अकड़ कर पलटता हुआ ताकि लोगों को अल्लाह की राह से गुमराह करे, अल्लाह ताला के बारे में गलत बातें मशहूर करता है। लहू फिद दुनिया खिज़्यून, उसको दुनिया में भी बदनामी है। वह नुज़ीक़ुहु यौमल क़ियामति अज़ाबन हरीफ, और वह क़ियामत के दिन जलने का के अज़ाब का मजा चखेगा, ज़ायखा अगर आप बोले। इसके माने एक्सपीरियंस के भी आते हैं। देखिए पिछली दफा कुल्लू नफ्सिन ज़ायखतुल मौत की बात आई, तो मैं मिसाल दिया कि भाई जैसा जायका थोड़ी देर का रहता, मौत क्योंकि आप सोए और मौत वाकई हुई और क़ियामत में उठे, टाइम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जायके की उतनी देर हुई। लेकिन इस लफ्ज के और एक एक माने आते हैं तजुर्बे के, एक्सपीरियंस करने का। तो यहाँ क्या है, यानी युज़ीखुहु यौमल, यानी ये क़ियामत के दिन जलने का अजाब एक्सपीरियंस करेगा, वहां थोड़ी देर का मजा नहीं होगा, एक्सपीरियंस करेगा, नहीं मालूम कब तक, जब तक के अल्लाह ताला चाहे। ज़ालिका बिमा खद्दमत यदाका व अन्न अल्लाह लैसा बिज़ल्लामिन लिल्अबीद, ये इसलिए जो तो तेरे हाथों ने भेजा है उसकी वजह से है, और बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों पे जो है जुल्म नहीं करता। व मिनन नासी मै याबुदुल्लाह अला हर्फ, और इंसानों में ऐसा है जो अल्लाह ताला की इबादत किनारे पे खड़े रह के करता है। ये किनारे का एक्सप्लेनेशन क्या है, तो इन असाबा वो खैरू नितमा अन्ना भी, अगर उसके साथ भलाई होती, खाते पीते मजे में चल रहे हैं तो बड़ा इत्मीनान से सेटिस्फाइड है। वो इन असाबत हूँ फितनत हूँ, यानी अगर उसको आजमाइश में डाला गया, लेके आजमाया जा रहा, निम खलबा आला वजी है, तो अपना अटेंशन अपना चेहरा अल्लाह ताला से फेर लेता है। देखिए हमारी भी कैफियत है, इम्तिहानों से पहले अल्लाह ताला की गरज है पांच वक्त की नमाज पढ़ो। कल ही कहीं बात आ रही थी ऐसी के जो है भाई ऐसी नमाज पढ़ रहे हैं कि घर वाले बोले अब नमाज नहीं छोड़ता है, रिजल्ट निकला फर्स्ट क्लास निकल गए, बेहतरीन परसेंटेज आया, ऐसी नमाज छोड़े के लोग बोले कि अब नहीं पढ़ता नमाज। तो अब यहां एक बात यह है कि अब इंसान की और एक कैटेगरी जो फितरत की आ रही है, ये 16 मरतबा कुरान में इंसान के कैरेक्टर को डिस्प्ले किया गया है, 16 मरतबा। तो अब देते रहते हैं आजमाइश, कुछ भी नहीं, दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं, खुश है इत्मीनान से, लेके आजमा रहे, तो जो अपना रुख पलट लेता है, बोले सब देखा। एक साहब मुझे रियाद में मिले थे, बोले तालीम याफ्ता आदमी, तो पंजाबी थे वो, बोले साहब मैं नमाज नहीं पढ़ता था, बोले मैंने नमाज शुरू की कुछ फर्क नहीं हुआ, तो मैंने नमाज छोड़ दी बोले कुछ फर्क नहीं हुआ। आप नमाज दौलत के वास्ते पढ़ रहे, अल्लाह ताला की इबादत के लिए, गुलामी का डिस्प्ले करने के लिए पढ़ रहे हैं या दौलत हासिल करने के लिए पढ़ रहे हैं? तो ये ह्यूमन नेचर जो है कुरान में जगह जगह खोल के बताया गया है। तो ये जो ऐसा आदमी है जो अल्लाह ताला जब देते हैं, देखिए जब देते हैं शुक्र अदा करना है, जब लेते हैं सब्र करना है। तो जब देते हैं तो खुश रहता है, और जब लेते हैं तो मुंह फेर लेता है। खसीरत दुनिया वल आखिरा, इसकी दुनिया का भी नुकसान हो गया, आखिरत का भी नुकसान हो गया। जालिका हुवल खुसरानुल मुबीन, और ये जो है खुली हुई खुला हुआ नुकसान है। खुसरान एग्जैजरेटेड नाउन है, जैसा रहमान, यानी बहुत ज्यादा खुला हुआ नुकसान है। इस किस्म का एटीट्यूड रखना, यदू मिन दूनिल्लाहि मा ला यज़ुर्रुहु व मा ला यन्फ़ुहु, वो अल्लाह ताला के अलावा ऐसों को पुकारता है, यानी अल्लाह ताला के अलावा क्या है, मखलूक है, मखलूक में से ऐसों को पुकारता है जो ना उसको नुकसान पहुंचा सकता है ना फायदा पहुंचा सकता है। सीधी सी बात है, मखलूक को आप पुकारेंगे तो ना नुकसान मिल पहुंचता ना फायदा पहुंचता। आप समझते कोई दे रहा है, देने वाला दिलाने वाला अल्लाह ताला है, किसी के हाथ से दिला दे वो बात और है, देने वाला असल जो है अल्लाह ताला है। जालिका हुआ जलालुल मुबी बबई, और ये बहुत दूर की गुमराही है, ना इतनी दूर की गुमराही, अल्लाह को छोड़ के दूसरों को पुकारना, ये बहुत ही दूर की जो है गुमराही है। यदू ली मन ज़र्रुहु अक़रबु मिन नफ़ी, यानी वो ऐसी मखलूक में से ऐसे चीजों को पुकारता है जिसका नुकसान ज्यादा करीब है बनिस्बत नफ़े के, बनिस्बत फायदे के। नुकसान क्यों करीब है, क्योंकि सूरह निसा की 48 और 116 दो जगह पे अल्लाह ताला बता दिए हैं कि अगर मैं चाहूं तो हर गुनाह को माफ करूं सिवाय शिर्क के, अगर मैं चाहूं तो हर गुनाह को माफ कर दूं, अगर चाहूं तो, मगर शिर्क के बारे में बोल दिया कि मैं माफ नहीं करूंगा, तो फिर ये मिन दूनिल्लाह किसी और को पुकार रहा, तो ये तो खुला हुआ शिर्क है।
اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنا، اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا، یہ شرک ہے. تو یہ اس کا نقصان زیادہ قریب ہے بنسبت فائدے کے. ولبئس المولا ولبئس العشیر، تو یہ جو مولا ہے اس کا جو گارڈین ہے جس کے طرف پلٹتا ہے وہ بھی خراب ہے، اور اس کا جو ساتھی ہے شیطان جو بھٹکا کے یہ کام کروا رہا ہے وہ بھی جو ہے برا ہے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے، یعنی قرآن پہ ویسے ہی عمل کرے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو پھر کیا ہوگا کہ ان کے لیے جنتیں باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو ارادہ ہے کرتا ہے. ہم اپنے ارادے پہ عمل نہیں کر سکتے. میں فرض کیجئے کہ سوچوں کہ یہاں سے کود کے فوراً فرسٹ فلور پہ چلے جاؤں، نہیں کر سکتا، میں مجبور ہوں، میری استطاعت کے باہر ہے وہ چیز. تو اللہ تعالیٰ جو ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے. اب اس آیت کے دو معنی آ رہے ہیں. اب آگے جو آگے آئے، من کانا یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، یعنی جو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کی مدد نہیں کرے گا. یہ ہو جو ہے ضمیر، بعض علماء اس کا ٹرانسلیشن ایسا کرے ہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا، اور بعض یہ بتا رہے ہیں کہ پیچھے نفع اور نقصان کی جو بات آ رہی ہے وہ کس لیے پکار رہے ہیں، مدد کے لیے. تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ مدد کرتے ہیں، اصل میں اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں. تو جن کا ایمان ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں کرے گا، دیکھیے دو انٹرپریٹیشنز ہیں. جو یہ سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا، اور جو سمجھتے ہیں کہ ان کی خود کی مدد نہیں کرے گا دوسرے لوگ مدد کریں گے. تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو ان کو چاہیے کہ کوئی ذریعہ آسمان تک پھیلائے. سُمَّلْ يَخْتَى، پھر اس کو کاٹ دے. فَلْيَنْزُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيظ، تو دیکھے کہ اس ترکیب سے کوئی رسی لٹکا دیے اوپر، اس کے بعد میں اس کو کاٹ دیے کہ ظاہر ہے گر جائیں گے، تو دیکھیں کہ ایسی ترکیب سے ان کا غصہ ٹھنڈا ہوتا کیا. اب یہاں دو انٹرپریٹیشن ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ مدد کیا ہے، جو سمجھتا ہے ان کی مدد نہیں کرے گا ایسا کر کے گر کے دیکھے کہ غصہ ٹھنڈا ہو. اگر یہ ضمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں ہے، مخاطب پہ ہے یا یہ مشرک پہ ہے، تو وہ دیکھے تو سمجھتا ہے کہ دوسرے مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرتا تو رسی ٹانگے کاٹ دے، گر جائے، ختم ہو جائے، دیکھے کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. کہ وہ کذالک انزلنا آیات بینات، اور اس طرح ہم نے اپنی آیاتوں کو کھول کھول کر سمجھایا ہے، قرآن کی آیاتوں کو کھول کھول کر سمجھایا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اللہ تعالیٰ جس کو وہ چاہتا ہے راستہ بتاتا. بات ختم ہو گئی. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ہدایت پہ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو راستہ دکھایا ہے. سیدھی پلین عربک ہے، وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، ارادہ کرتا ہے. یُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے راستہ دکھاتا ہے. یہ اس کا پاور بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ہمارا کام کیا ہے؟ ہم ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا پاور ہے، ایک ہماری ڈیوٹی ہے. ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ قرآن نازل ہو گیا، حدیث سامنے ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے ہے، ہم قرآن پڑھیں اور قرآن پہ ویسے ہی عمل کریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اگر یہ ہو رہا ہے تو بیک آف دی مائنڈ دل میں یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ دکھایا ہے. قرآن خود اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، ہم کو پڑھنے بٹھا دیا ہے، اس کا کام ہے، مگر ہماری ڈیوٹی ہے کہ کام کر لیں. اب کسی کے اوپر آپ وقت ضائع کر رہے ہیں، وہ مانتا ہی نہیں، تو سمجھ جانا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دینا چاہ رہا. آپ دنیا بھر کی محنت کر لیں، ہدایت نہیں دینا چاہ رہا، کیا کر سکتے ہیں. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس مجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو ایمان لائیں اور وہ لوگ جو یہودی ہیں اور وہ لوگ جو ستارہ پرست ہیں، وہ لوگ جو کرسچنز ہیں، وہ لوگ جو آتش پرست ہیں پارسی جس کو ہم بولتے ہیں، اور وہ لوگ جو مشرک ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے. بھائی یہاں تو دنیا بھر کے جھگڑے چل رہے ہیں، یو آر رائٹ، آئی ایم رائٹ، وہ ہے قرآن سے یہ نکالو، قرآن سے وہ نکالو، ہنگامے چل رہے ہیں چو چرے. کئی اسٹیٹمنٹس آئے لوگوں کے، نعوذ باللہ، بولے قرآن میں یہ چیزیں ہونے کی وجہ سے ایسا ہو رہا تو یہ آیتیں نکال دو، بلکہ ڈیمانڈ آیا لوگوں کا، ہم صحیح ہے، تم صحیح ہے، وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں یہ فیصلے یہاں ہونے کے نہیں ہیں،
قیامت کے دن یہ فیصلے ہوں گے تمام لوگوں میں جو قیامت کے دن فیصلے ہوں گے. اور مشرکین کے بارے میں تو فیصلہ ہو چکا ہے, بتا دیے کہ یہ ان کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ گواہ ہے, مومنین پہ گواہ ہے, یہودیوں پہ گواہ ہے, کرسچنز پہ گواہ ہے, ستارہ پرستوں پہ گواہ ہے, آتش پرستوں پہ گواہ ہے, مشرکوں پہ گواہ ہے, سب پہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے. اس کو ضرورت نہیں ہے کہ بھئی ہاں بھئی کوئی ثبوت لے کے آؤ, وہ خود گواہ ہے, اس کو معلوم ہے, تو اس دن فیصلہ کرے گا. اب یہ آیت سجدہ آ رہی ہے تو یہاں ذرا اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ الم ترى ان اللہ یسجد له من فی السماوات و من فی الارض, کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں جو کوئی آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے, وہ شمس والقمر اور سورج اور چاند, وہ نجوم اور تارے, والجبال اور پہاڑ, وہ شجر اور جھاڑ, وہ دواب اور تمام جانور, وہ کثیر من الناس اور انسان میں کثیر تعداد, وہ کثیر حق علیہ العذاب اور بہت سے ایسے ہیں جن پہ عذاب حق ہو گیا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جھکتے. اب یہاں ایک بات کرنا ہے کہ سجدے کو لفظ سجدہ سمجھنا ہے. لفظ سجدے کے معنی ہوتے ہیں کہ سمبل آف سبمیشن, ٹوٹل سبمیشن, جھک جانا اللہ تعالیٰ کے سامنے. کیونکہ ہم نے نہ سورج کو جھکتے ہوئے دیکھا ہمارے ویسا سجدہ کرتے ہوئے, نہ چاند کو دیکھا, نہ تاروں کو دیکھا, نہ جھاڑوں کو دیکھا, اور نہ جو ہے جانوروں کو دیکھا. تو یہاں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مکمل اطاعت اللہ تعالیٰ کی کرنا ہے. مکمل اطاعت ساری کائنات کی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو لاز بنائے ہیں جس کو لاز آف نیچر ہم بولتے ہیں, وہ لاز آف نیچر کی پیروی کرنا, مکمل پیروی کرنا. کیونکہ لاز آف نیچر اور لاز آف اللہ تعالیٰ, یہ سائنٹسٹ کا عجب عجیب پریشانی ہے, لاز آف نیچر بولتے. مومن کو چاہیے کہ ان کو لاز آف اللہ ہے بولنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے قوانین. تو اللہ تعالیٰ کے قوانین کے سامنے مکمل جھک جانا یہ سجدہ ہے. اور کئی انسانوں میں سے بھی ہم لوگ ابھی سجدہ کر چکے, کئی نہیں مانتے, نہیں جھکتے اللہ تعالیٰ کے سامنے. پھر اس کے بعد میں اب یہاں دو سجدے اور سمجھنا ہے. فرشتوں کا سجدہ کروایا گیا انسان, تو اس سے پہلے بات آئی کہ بھائی فرشتے کیا ہے؟ ملائک, میم لام کے کاف کے مادے میں جو انرجیز کی بات آ رہی ہے, تو ابلیس نہیں کرا, ابلیس فرشتہ نہیں تھا. قرآن سے ثابت ہے کہ انہو کانا من الجن, سورہ کہف کی 50 آیت ہے. تو تمام انرجیز کو کہا گیا تھا کہ انسان کے سامنے جھکو, تو نہیں جھکے, ابلیس نہیں جھکا, دوسرے انرجیز جھک گئے. تو اب آپ کے پاس الیکٹریسٹی پہ کمانڈ ہے, ساؤنڈ پہ کمانڈ ہے, میگنیٹزم پہ کمانڈ ہے, ہیٹ پہ کمانڈ ہے, نیوکلیئر انرجی پہ کمانڈ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اگر وہ نہیں جھکا تھا تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. اور آج آپ یوروپینز اور یہودی اتنے ایمیونیشن ہیں ان کے پاس, یہ انرجی اللہ تعالیٰ کبھی بھی سلب کر لے سکتے ہیں ان سے, اس وقت ہماری میجورٹی ہو جائے گی. ہم تو ماریں گے, جو حدیث میں جو بات آ رہی ہے کہ پہاڑ بولیں گے کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے, مشرک چھپا ہوا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ پریزنٹ سیٹ اپ جو ایمیونیشن کا ہے اس میں تو ہم لڑ ہی نہیں سکتے ان سے. بلکہ ٹی وی پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ٹینکس چلے آ رہے ہیں, ان کے بچے جو ہے پتھرے مار رہے ہیں اس کے اوپر. یہ ہمارا کمپیرزن ہے, ہم خالی پتھرے مار سکتے ہیں, ہمارے پاس ایمیونیشن ہی نہیں. حالانکہ حکم آیا تھا کہ تم تیاری کرو, اسلام کو قائم رکھنے کے لیے, ڈیفنس کے لیے تیاری کرو, ہم نے نہیں کی. تو یہ انرجیز کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے قبضے میں دیا, یہ آپ کا کمال نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے انسان کے, اور کبھی بھی اس کو سلب کر لے سکتا ہے. پھر یوسف علیہ السلام کی مثال دی ہے کہ وہ زمانے میں سجدے کا یہ تھا کہ ایک مارک آف ریسپیکٹ تھا کہ ان کے والدین اور ان کے تمام بھائی جو ان کے سامنے جھکے. اس کے بعد میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات کی ممانعت آ گئی. تو جو تمام سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرتے ہیں, وہ میں یوہن اللہ فما لہ من مکرم, اور جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں. پھر بات معلوم ہو گئی کہ عزت بھی آپ کے ہاتھ میں, ذلالت بھی آپ کے ہاتھ میں. سورہ آل عمران میں بھی بات آ گئی. آپ سمجھتے ہیں کہ دوسروں میں ایک پرٹیکولر گروپ میں موو کر کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی میں ان میں موو کروں گا تو میری عزت ہوگی. میں سے پہلے بھی بولا کوئی میری پہچانت کے بہت کوئی صاحب جو ہے گھر پہ فون کرے کر کے بولے بھائی ایک گڈ نیوز ہے. بولے کیا ہے؟ تو بولے مجھے فلاں کلب کی ممبر شپ مل گئی. بولا واہ, بولے کیا گڈ نیوز ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا. تو بولے آپ کو معلوم ہے حیدرآباد کے ٹاپ انفلوئنشل لوگ آتے ہیں وہاں. بولے تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ یہ کلب سے عزت نہیں ہوتی, لوگوں میں موو کرنے سے عزت نہیں ہوتی. عزت جس کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں
उसकी इज्जत होती है, जिसको अल्लाह ताला जलील करते हैं वो जलील होता है। इन्ना अल्लाह यफ़लू मा यशा, और बेशक अल्लाह ताला जो वो चाहता है करता है। ये आयत सजदा है, इंशाल्लाह खत्म होने के बाद हम इंशाल्लाह सजदा कर देंगे। हाज़ान खस्मान इक्तसमू फी रब्बिहिम, ये दो झगड़ा करने वाले हैं जो अपने पालने वाले के बारे में झगड़ा करते हैं। ये झगड़ा क्या हो सकता है दोनों में? ये दो कौन है? एक तो मोमिन है, एक काफिर है। देखिए मोमिन बोलता है कि अल्लाह मेरा पालने वाला है, काफिर बोलता है नहीं, अरे मेहनत कर रहे हैं सुबह से दफ्तर में बैठ के कमा के लेके आए, आप अल्लाह का पालने वाला है बोल रहे हैं। तो ये दोनों का झगड़ा है। काफिर अगर अल्लाह ताला को रब मान ले तो फिर मोमिन हो जाए। तो मोमिन की तो ये शान है कि वो अल्लाह ताला को अपना मालिक और अपना पालने वाला फोस्टरर समझता है, काफिर ये नहीं मानता। फल्लज़ीना कफरू, तो जो इस इनकार करते हैं, अल्लाह ताला का इनकार करते हैं, अल्लाह ताला का रब होने का इनकार करते हैं, खुतियत लहुम सियाबुन मिनन नार, इनके लिए आग के कपड़े काटे जाएंगे। देखिए जरा थोड़ा सा इसको फील करना, प्रैक्टिकली फील करना। हमारे जो कपड़े हैं हमारे जिस्म से लगे हुए हैं, पूरे चिमटे हुए, तो आग के जब कपड़े काटे जाएंगे तो वो कपड़े चिमटे में रहेंगे जिस्म से, डेरे के ऐसा तो नहीं रहेंगे, वो भी है पिलर्स की तरह आग में जो है बंद कर दिया जाएगा। तो क्या कैफियत होगी है? भाई मामूली भाप अगर लग जाए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप अगर लग जाए तो छाले आ जाते, तबीयत बहाल हो जाती। मामूली आग लग गई तो बोले भाई वो 70% बंद है, उनका बचना मुश्किल है बोले। तो यहाँ तो बोले कि पत्थर और इंसान ईंधन होंगे, अब ये बोल रहे हैं कि कपड़े इनके जो है आग से, आग के काटे जाएंगे। और इनके सरों पे जो है गर्म पानी डाला जाएगा। हमीम इसी से हम्माम है, जहाँ गर्म पानी से पानी नहाया जाता है, हमारी इस्तेलाह में हम्माम का लफ्ज आ गया। वो हमीम का मतलब जो है गर्म पानी, और पक्का दोस्त जैसा पानी उबल के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में वाटर के चले जाते, हमीम पक्के दोस्त को भी बोलते कि एक दूसरे में दोस्त जो है मिले हुए रहते, उन्होंने इनके घर में जा रहे हैं, उन्होंने उनके घर में जा रहे हैं, वैसे पक्के दोस्त को भी हमीम बोलते। तो इनके सरों पे गर्म पानी डाला जाएगा, युस हरू भी माफी बुतूनिहिम व जुलूद, तो उससे उनके पेटों में जो है और उनके खालों में जो है वो मेल्ट हो जाएगा, गल जाएगा। कितना नहीं गर्म पानी होगा भाई, आप गर्म पानी नहाते हैं, आप गर्म पानी चाय पीते हैं, कुछ भी नहीं होता। अब आप गौर कीजिए, चाय गर्म गर्म जो है जबान पे जाती कुछ भी नहीं होता, वही चाय आप पीते पीते जरा जिस्म पे डाल के देखिए कैसा जलता, क्योंकि ये टिश्यूज डिजाइन ही नहीं है वो टेम्परेचर के वास्ते। पी रहे मजे में आप, कुछ भी नहीं हो रहा, आंख पे गिरते, क्या जल गया भाई, बोले चलो छाला आ गया, तो वो टिश्यूज डिजाइन ही नहीं है हाई टेम्परेचर के लिए। तो वहां की जो गर्मी होगी, तो जो गर्म पानी होगा उसका टेम्परेचर इतना होगा कि इनका अंदर जो पेट वगैरह है वो और जिल्द उसके लिए डिजाइन ही नहीं है, तो ये पूरे जो है पिघल जाएंगे। कितनी नहीं गर्मी होगी, अल्लाह महफूज रखे हमको हमारे मुतालिकीन को। व लहुम मखामिउ मिन हदीद, और उनके लिए हंटर्स होंगे लोहे के, जैसा सर्कसों में देखते हैं आपको चमड़े के हंटर से मारते, इस तरीके से लोहे के हंटर होंगे। कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिन्हा मिन गम्मिन उईदू फीहा, और जब भी ये इरादा करेंगे कि वो दोजख से निकलेंगे तो उनको वहां लौटा दिया जाए। अब ये मालूम होता है कि भाई ब्लैक होल की कैफियत तो नहीं, ब्लैक होल में तो अंदर आग ही आग है, पूरी आग है, और इतनी इतनी ग्रेविटी है कि रोशनी तक बाहर नहीं निकल सकती, इस वास्ते ब्लैक होल बोलते हैं उसको। तो ये निकलना भी चाहेंगे तो ग्रेविटी उनको अंदर खींच लेंगी, ऑटोमेटिक अरेंजमेंट है। ब्लैक होल्स तो हर गैलेक्सी में ब्लैक होल्स डिस्कवर होंगे, तो दोजख तो देख लिए हैं, उसके बावजूद अगर ईमान नहीं लाते हैं तो हमारी बदकिस्मती है। वज़ूक़ु अज़ाबल हरीक, और कहा जाएगा कि ये जलने का अजाब जो है चखो, इसका एक्सपीरियंस करो। उसके बरखिलाफ इन अल्लाह युदखिलुल लज़ीना आमनू आमिलुस सालिहाती जन्नतिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अमल साले करे, कुरान पे वैसे ही अमल करे जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, तो उनके लिए जो है बागात होंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। युहल्लूना फीहा मिन असाविरी मिन ज़हबिन वलूलू, और उनको जो है सोने के कंगन पहनाए जाएंगे,
اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا. اب اس زمانے میں ریشم کی بڑی قیمت تھی, تو ریشم کا, یعنی کہ یہاں آگ کا لباس ہے وہاں ریشم کا لباس, وہاں آگ جاری ہے یہاں جو ہے ندیاں بہ رہی ہیں, ندیوں کا پانی ہے اور سونے کے جو ہے ہو سکتا ہے یعنی ان کے وہ بتانے کے لیے, کہ ان کا مقام بتانے کے لیے سونے کے کنگن جیسا یہاں میڈلز وغیرہ لگاتے ہیں, ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. وہ لباس ہم فیہا حریر, اور ان کا لباس وہاں جو ہے ریشم ہوگا. وہ ہدو الی الطیب من الخول. یہ دیکھیے اب یہاں بات سمجھیے, یہ پیسو وائس ہے, جو کوئی تھوڑی بہت عربی سمجھتے ہیں, ایکٹیو وائس اور پیسو وائس. دیکھیے آپ میرے لیے کوئی کام بولے, میں بولا کہ آئی ول ڈو اٹ, میں کر دوں گا, یہ ایکٹیو وائس ہے. آئی ول گیٹ اٹ ڈن, یہ پیسو وائس. تو یہاں ہدو یہ پیسو وائس ہے, فعل مجھول جس کو بولتے ہیں. ان کو ہدایت دی گئی تھی, یہ جو جنتی ہیں, ہدو الی طیبی من الخول, یعنی بات میں جو پاک اور فائدہ مند ہے یعنی قرآن اور کلمہ طیبہ, اس کی ان کو ہدایت دی گئی تھی. پہلے کون دیا تھا ہدایت؟ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی, اسی لیے جنت ملی. وہ ہدو الی صراط الحمید, اور ان کو راستہ دکھایا گیا تھا حمید کا, یعنی اللہ تعالیٰ جن کی تعریف کی گئی ہے, جن کا شکر ادا کیا گیا ہے, ان کا راستہ, جنت کا راستہ ان کو بتایا گیا تھا. اب دیکھیں ذرا ایک بہت ڈیلیکیٹ پوائنٹ سمجھے, جو ممکن ہے میں غلط ہوں, مجھے جو سمجھ میں آیا کہ مومن کا ایمان ایسا رہتا ہے کہ آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں, میں نہیں کرایا کروایا گیا ہوں. کافر کا مزاج ایسا رہتا ہے میں نے کیا ہے, میں ایسا کروں گا, میں ویسا کروں گا. مومن کا ہمیشہ یہ رہتا, آپ توفیق دیے تو توفیق, آپ ہدایت دیے میں ہدایت پہ ہوں, آپ دولت دیے میں دولت پہ ہوں, آپ علم دیے میں علم پہ ہوں. مگر کافر یہ بولتا ہے کہ بھئی میرے علم میں یہ بات نہیں آئی, میں نہیں سمجھ سکا آپ ایسی کیسی بات بول رہے ہیں. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مومن کا ایک پیسو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, آپ دیں گے تو میں لوں گا, میں کیا کر سکتا ہوں. اور کافر کا ایک ایکٹیو ایٹیٹیوڈ ہوتا, انا کی کیسی, ایکٹیو تو اللہ تعالیٰ ہے, انا تو اللہ تعالیٰ کو سوٹ کرتی, اور کس کی انا ہے, فاعل حقیقی تو وہی ہے, کائنات پوری پیدا کریں. تو بولے یہ وہ لوگ ہیں, یہ جنتی وہ لوگ ہیں جن کو ہدایت دی گئی تھی, جن کو جنت کا راستہ بتایا گیا تھا, اللہ تعالیٰ کا راستہ بتایا گیا تھا. ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ, اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا, قرآن کا, رسولوں کا تمام, اور پھر لوگوں کو یسودونا یسدونا عن سبیل اللہ, اور اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکتے ہیں. والمسجد الحرام, اور مسجد حرام کعبے کو بھی جانے سے روکتے ہیں, جو مشرک مکہ تھے. اب جیسا سیدھی سی بات ہے, صلح حدیبیہ میں 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ تقریباً 1400 صحابی کو لے کے واپس ہونا پڑا, مسجد حرام سے روک دیے, کعبے کو جو ہے طواف کرنے کی اجازت نہیں دیے وہ لوگ, حالانکہ وہاں کے ان اصولوں کے خلاف بھی تھا. تو وہ لوگ جو مسجد حرام کو جانے سے روکتے ہیں, یعنی مسجد حرام, کعبہ شریف کا معاملہ کیا ہے, یعنی حرام الذی جعلناہ للناس سواء للعاکف فیہ والباد, یعنی جس جو ہم انسانوں کے لیے مساوی بنائے ہوئے ہیں, ایکول بنائے ہوئے ہیں, وہاں جو رہتا ہے اس کا بھی اسی حق, وہی حق ہے, اور جو دوسرا وزٹ کرتا ہے اس کا بھی وہی حق. ماں کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ بھئی ہم کعبے والے ہیں, ہم پہلے کریں گے تم بعد میں کریں گے, نہیں. تو دونوں کا, باہر سے آنے والے کا بھی حق اتنا ہی ہے اور وہاں رہنے والے کا بھی حق اتنا ہی ہے. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ, اور وہاں جو بھی کوئی ظلم سے یعنی صحیح راستے سے حق سے ہٹنا چاہے گا, حق کی طرف پلٹے گا, نُذِيقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ, تو ان کو ہم ایک تکلیف دہ عذاب کا مزہ چکھائیں گے, ایکسپیرئنس کروائیں گے. اب یہ ملحد اور حنیف میں کیا فرق ہے؟ حنیف کا لفظ آیت نمبر 31 میں انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے آئے گا. حنیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص جو تمام بری چیزوں کو چھوڑ کے اچھی چیزوں کی طرف چلے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سرٹیفکیٹ ہے, کانا من
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ آیا, پھر حنیف تھے بلکہ آیا. اور اس کا اپوزٹ ملحد ہے. ملحد کس کو بولتے ہیں؟ جو اچھی چیزوں کو چھوڑ کے بری چیز کی طرف, غلط چیز کی طرف پلٹ جاتا ہوں. تو جو کوئی مکہ معظمہ میں یعنی ظلم سے صحیح چیز کو چھوڑ کے غلط چیز کی طرف چلے جائے گا, تو اس کو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ نُذِيقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ, ہم اس کو جو ہے بہت تکلیف دہ عذاب ہم اس کو چکھائیں.